मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 23 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं, तो पहले कुछ सूचनाएं ये हैं फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी और साथ ही साथ योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में, और कुरुक्षेत्र पत्रिका के भी आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। मुझसे अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि क्या जो आप आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं योजना और कुरुक्षेत्र के, वो हमें पढ़ने ही चाहिए, और दूसरा यह कि क्या इतने ही पर्याप्त होंगे। दोनों ही बातों के जवाब यस में है मित्र, पढ़ने ही चाहिए। अगर वो पढ़ने लायक नहीं होते तो देखिए मैं क्यों देता, पहली बात। दूसरी बात कि जो मैं अपने ढंग से चयन करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में न्यूज हो या इस तरह के लेख हो, अखबार की क्लिपिंग्स हो या एडिटोरियल कमेंट हो, एडिटोरियल आर्टिकल्स हो, उनके चयन करने की मुझ में अच्छी क्षमता है। इतना लंबा अरसा हो गया इस फील्ड में काम करते हुए तो मैं बहुत अच्छे से चयन कर लेता हूं। तो जो बेहतरीन आपके एग्जामिनेशन के लिए लेख हो सकते हैं योजना कुरुक्षेत्र के, मैं वो आपको प्रोवाइड कर देता हूं। वो बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल्स होते हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि इन 4 आपके लिए काम कर देंगे तो वो पर्याप्त भी है, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए तो आपकी च्वाइस है। लेकिन यदि आप पत्रिका के दूसरे लेखों को नहीं पढ़ते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आप कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और दोस्तों आप देखते हैं, जानते हैं कि मार्जिन तो लेकर के चलना ही पड़ता है। मैं कैसे ये दावा कर सकता हूं कि नहीं मैंने जो दिया है उससे बाहर की कोई चीज पूछी ही नहीं जा सकती, ये तो मैं कहने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, साप्ताहिक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। दोस्तों आइए अब हम लोग मुख्य विषय और न्यूज की बात करें। मुख्य विषय के तहत मैं आपसे रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। आज के 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपने न्यूज में सुनी भी होंगी, खैर इसमें एक खबर न्यूज में थी, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस गए हुए हैं, है ना। फ्रांस के बारे में बकायदे अखबारों में आज आपको काफी कुछ पढ़ने को मिला भी होगा, उसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए भारत और फ्रांस के संबंध लगातार बहुत क्लोज घनिष्ठ होते चले जा रहे हैं, शुरू से भी रहे हैं। फ्रांस अभी देखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया था, तो भारत का पक्ष लेने वाला जो सबसे पहला जो देश था वह फ्रांस ही था। आपको मालूम है कि फ्रांस से भारत राफाल विमान खरीदने वाला है और अब कुछ ही दिनों में वो राफाल विमान भारत को मिलने वाले भी हैं, तो ये हमारे फ्रांस के साथ संबंध है। केवल एक क्षेत्र की बात नहीं है, बहुत दूसरे क्षेत्रों में भी संबंध है। बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो लेटेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको केवल बता रहा हूं। फ्रांस जो है हमारे यहाँ जो उपकरण आते हैं, रक्षा उपकरण, हथियार वगैरह, रक्षा सामग्री कह लीजिए, उसमें सबसे बड़ा देश तो रशिया है। रूस से हमें सबसे ज्यादा रक्षा सामग्री मिलती है, आपको ये मालूम भी होना चाहिए। जो दूसरा देश है वो इजराइल है, तीसरा है अमेरिका और चौथा है फ्रांस। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रांस कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और भारत और पाकिस्तान के मामले में तो वो भारत के साथ खड़ा ही है, और उसने बकायदे वक्तव्य भी दे दिया है जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे हैं और जब मिले हैं कि नहीं ये दोनों का आपसी मामला है और इनको आपस में ही बातचीत करके सुलझाना चाहिए, किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपने एक खबर और भी पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री हमारे G7 के बैठक में भाग लेंगे। G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भाग लेंगे। पहली बात तो आप ध्यान में रखिए कि भारत G7 का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को बुलाया गया, भारत के हमारे प्रधानमंत्री उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, तो इसमें 7 देश हैं। बेहतर होगा कि एक बार आप नाम सुन लें। ये 7 देश हैं फ्रेंड्स, कनाडा, फ्रांस में तो हो ही रही बैठक, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं, और USA अमेरिका। तो अब आप देखिए कि जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं सबके सब बहुत वजनी नाम है, बहुत बड़े, मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध। अगर इटली को आप थोड़ा सा किनारे कर दें तो सभी बहुत विकसित राष्ट्र हैं, और अगर पूरे दुनिया की संपदा को 100 मान लिया जाए तो 57% संपदा, 58% संपदा केवल इन 7 देशों के पास है, तो इनकी आर्थिक ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री का ऐसे सम्मेलन में आमंत्रित होना एक भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है और अखबारों में छपी है और आज उसको लेकर के अखबारों में आर्टिकल भी हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वह है आधार नंबर को सोशल मीडिया से जोड़ने की सरकार की आप नीति, या कह लीजिए कि सरकार ने ऐसा कहा है कि ये जो लोगों के आधार नंबर हैं उन्हें सोशल मीडिया से जोड़ा जाए। उसका कारण है कि उनका ये कहना है कि अगर सोशल मीडिया से इस आधार नंबर को जोड़ दिया गया तो इससे जो फर्जी खबरें आती हैं, जो साइबर बुलिंग होती है, जो ट्रॉलिंग होती है और जो अपराध होते हैं, तो उससे लड़ने में, उसकी रोकथाम में सरकार को मदद मिलेगी। ये सरकार का तर्क है, तो वह सोशल मीडिया से इसे जोड़ना चाहती है। इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं और बकायदे सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है। अलग अलग कुछ राज्यों के हाई कोर्ट में दायर हुई थी, तो फैसला एक ही तरह का हो तो सारे मामले अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। अब आप देखिए कि लोगों में एप्रिहेंशन क्या है इसको लेकर के, जो चिंताएं हैं, चिंताएं इस तरीके की हैं कि अगर हमारा इस तरह से सोशल मीडिया से आधार नंबर जुड़ गया, आपको मालूम है कि आधार नंबर में सारी जानकारियां हमारी हैं, तो यह हमारे निजता का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे अनुच्छेद 21 में जो हमारे जीवन का मौलिक अधिकार है उसके तहत इसे भी, निजता को भी जीवन का मौलिक अधिकार मान लिया है, घोषित कर दिया है। यानी कि निजता का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार में शामिल है और डेटा, यानी कि आधार में हमारे सारे के सारी जानकारियां डेटा है, वो निजता में शामिल है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो आधार कार्ड से सीधे सोशल मीडिया से जोड़ देना आधार का नंबर को, हमारी निजता का उल्लंघन करना होगा। आपको मालूम है कि बकायदे वो बायोमेट्रिक विवरण से जुड़ी हुई होती है और जितनी कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया की हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके जो सर्वर हैं वो भारत में नहीं है, ज़्यादातर सर्वर उनके भारत के बाहर हैं। और अगर भारत के बाहर सर्वर हैं और सोचिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर हैक कर ली गई या उस कंपनी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को दे दी गई, तो चूंकि वो दूसरे देशों में स्थित है तो वहां हमारे देश का कानून तो चलेगा नहीं, वहां के कानून चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में कितना बड़ा संकट भारत के सामने खड़ा हो सकता है। तो इसको लेकर के जबरदस्त विरोध हो रहा है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको हिंदुस्तान का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, दैनिक हिंदुस्तान का, हिंदी में है, इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स पवन दुग्गल जी ने उठाए हैं जो साइबर कानून विशेषज्ञ भी हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, कुछ इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं कुछ अखबारों के एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इन्हें भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अपने जो एडिटोरियल कमेंट है उसका शीर्षक ही दिया है, ये टेरिबल आइडिया, यानी कि एक भयावह विचार। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना विरोध इस विचार का हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, वर्षा वन पर। और ये विषय क्यों चुना गया है, आप को मालूम हो गया होगा कि पिछले एक सप्ताह से जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन जंगल जिसको कहते हैं, जो वो खासकर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कई देश इसके तहत आते हैं, जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, चिली है, वेनेजुएला है, आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस जंगल में जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, उसमें भयानक रूप से आग लगी हुई है और उसे लेकर के पूरी दुनिया अब चिंतित हो गई है। 7 दिनों से आग लगी हुई है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली रेन फॉरेस्ट है क्या। देखिए, जो रेन फॉरेस्ट है, शब्द पर आप जाइए, एक ऐसे फॉरेस्ट एक शब्द हटा दीजिए जो वर्षा से पैदा हो रहे हैं, वर्षा के कारण है रेन फॉरेस्ट। तो सीधी सी बात है कि ये जो रेन फॉरेस्ट होंगे वो ऐसे फॉरेस्ट होंगे जहां वर्षा खूब होती होगी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जहां वार्षिक वर्षा जो है वो 250 से 450 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, यानी कि काफी बारिश। देखिए, हमारे यहाँ जो जंगल कहते हैं ना, वो जंगल एक तरीके के वर्षा वन है, और वर्षा वन भारत में भी है। अंडमान निकोबार के जो वन है आप देखिए, वो भारत में है, वो वर्षा वन है। खासकर अगर ज्योग्राफी की आपकी थोड़ी सी भी बैकग्राउंड होगी या ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तर में भी और दक्षिण में भी जो 10-10 डिग्री अक्षांश है, यानी कि 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में इस बेल्ट में जो वन है वो वर्षा वन कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कि आपको मालूम है कि भूमध्य रेखा के इस 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण यानी कि टोटल 20 डिग्री अक्षांश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो यहां उसी तरह के वन पाए जाते हैं। भारत को अब का भी आप मालूम है कि जो अक्षांश का फैलाव है, आप साउथ की तरफ आप देखिए तो हम काफी कुछ भूमध्य रेखा के पास पहुंच जाते हैं, तो भारत में भी ऐसे वर्षा वन है। तो आपको साउथ एशिया में आप कह लीजिए कि म्यांमार से लेकर के फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब में भी वर्षा वन है। अफ्रीका में आप मैप में देखेंगे तो कैमरून से लेकर कांगो तक बाकायदे वर्षा वन है। दक्षिण अमेरिका में तो अमेजन जो अभी रेन फॉरेस्ट जहां आग लगी हुई है वर्षा वन ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी देखेंगे तो इस तरह के अक्षांश के बेल्ट में वो पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वर्षा वन है। और सबसे बड़ी बात देखिए जो पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चिंतित है, ये जो वर्षा वन है ये सच पूछे तो इसे लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मतलब धरती के फेफड़े, क्योंकि वन है और दुनिया को जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसका लगभग 20% ऑक्सीजन, कहीं कहीं आपको 28% भी पढ़ने को मिलेगा ऑक्सीजन, ये वर्षा वन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो अमेजन के जो जंगल है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 20% तो यही दे रहे हैं, 28% टोटल वर्षा वन देते हैं। सोच के देखिए, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए लंग्स ही हो गए। कुछ लोग इसे पृथ्वी का जवाहरात भी मानते हैं, यहां जो संपदा है प्राकृतिक संपदा, तो ज्वेल्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। कुछ लोग इसे धरती का सबसे बड़ा दवा खाना कहते, फार्मेसी, बिगेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी इसलिए कि यहां इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जिनसे दवाइयां, अद्भुत किस्म की दवाइयां बनाई जाती हैं। जैव विविधता का तो ये खजाना ही है, और बकायदे बायोडायवर्सिटी आपके सिलेबस में है, एनवायरमेंट आपके सिलेबस में है, और ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है ही है। तो दोस्तों, ये जो वर्षा वन का टॉपिक है यह आपके तीन सब्जेक्ट को कवर करता है, और इसके बारे में आपको इनफैक्ट अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। और सीधी सी बात है कि जैसा मैंने 10-10 डिग्री की बात कही है, तो ये क्षेत्र है जहां बहुत गर्मी पड़ती है, कि जहां कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ी सी आर्द्र किस्म की होती है, वेट होती है, और इसीलिए वहां वर्षा भी ज्यादा होती है। इसको अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि वर्षा वन के चरित्र को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। यहां केवल पेड़ों की विविधता नहीं है, यहां केवल पौधों की ही विविधता नहीं है, यहां जंतुओं की भी बहुत ज्यादा विविधता है। तो मित्रों, समय की सीमा को देखते हुए वर्षा वन के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विनीत शुक्ला बस्ती से, मीरज शेख, खुशबू प्रजापति, अंशु कुमार, हिमांशु नारनिया, सुयस तिर्की, श्वेता सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और शाश्वत सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, अब 2 दिनों की छुट्टियां हैं, इन 2 दिनों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें, और 2 दिनों के लिए मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।